أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. إن شاء الله آج سے ہماری جو گفتگو کا محور ہوگا وہ علم منطق میں کتاب ہے دانش منطق کے نام سے، کہ جو جناب محمود منتظری مقدم کی لکھی ہوئی ہے. اور دانش منطق آغے منتظری مقدم نے اس چیز کا احساس کیا کہ علم منطق چونکہ جو بھی انسان فکر کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے، تو جو سکولوں میں کالجز و یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی علم منطق پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو منطق مظفر جیسی کتاب یا مثلا حاشیہ ملا عبداللہ جیسی کتاب جو عربی میں ہے ان کو تھمائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، تو متن کے اندر جا کر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. مثلا جب عربی متن پڑھنے لگتے ہیں تو وہ مفاہیم جو سمجھنے ہوتے ہیں وہ عربی کے اندر پھنس جاتے ہیں، ایسے کہ خود مفہوم بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آغا منتظری مقدم نے احساس کیا اس بات کا کہ ایسی ایک سلسلہ منطق کی کتابوں کا شروع کیا جائے جو ابتدائی لیول سے آخری سٹیج تک جو ہے کور کرے اس کو، اور وہ ہو فارسی کے اندر، چونکہ ایرانی افراد مد نظر تھے، تاکہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ اگر علم منطق پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اس مفاہیم کو، مطالب کو سمجھنے پر اپنا وقت صرف کریں. عربی متن اگر نہ بھی پڑھیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا انہوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا. اس میں انہوں نے منطق ایک کے نام سے، دانش منطق ایک کے نام سے لکھی. پہلے منطق ایک کے نام سے لکھی تھی، پھر مرکز مدیریت کی طرف سے، کہ جو کہ حوزہ علمیہ قم میں نصابی کتابوں کا بڑا ادارہ ہے، انہوں نے پھر اس کو مزید منظم کروا کے جو ہے وہ دانش منطق نام رکھا، اور پھر اس کے آگے ایک لکھ دیا، یعنی وہ ابتدائی کتاب ہے. دوسرے مرحلے میں انہوں نے پھر وہی کتاب کا نام رکھا دانش منطق، اور لیکن منطق دو ہے اس کا مرحلہ جو ہے وہ اس ابتدائی و آشنائی والے مرحلے سے زیادہ ہے. مثلا آپ اگر اس منطق ایک کو سامنے رکھیں تو وہاں پر جلد کے اوپر مرحلہ آشنائی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جلد کے اوپر جو ہے وہ مرحلہ شناخت لکھا ہے، یعنی یہاں پر وہ آشنائی آپ کی ہو گئی ہے، ابھی شناخت کا مرحلہ، یعنی آپ ڈیپلی تھوڑا سا جا کر ابحاث کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل کریں گے. تو یہ روش چونکہ انتہائی اچھی روش ہے کہ تعلیمی لیول کا خیال رکھ کر اور سطح ذہنی کو مد نظر رکھ کر کتابوں کو لکھا جائے اور پڑھایا جائے، یہ زیادہ ثمر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک کتاب پہلے سے معین ہو اور اس کو جو پڑھا دی جائے، چاہے وہ بچہ میٹرک کا ہو، چاہے وہ بچہ جو ہے وہ کالج کا ہو، کسی بھی صورتحال کا ہو، تو وہ ڈال دیں، وہ تعلیمی اعتبار سے وہ اچھا شمار نہیں ہوتا. ریکارڈ کر رہا ہوں. تو یہ تعلیمی اعتبار سے جو ہے وہ اچھا شمار نہیں ہوتا. تو یہ مجھے بھی روش بہت اچھی لگی ہے، اور میرا بھی ہدف یہی ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ منطق کو عام کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے. لیکن چونکہ آپ منطق دو کا مباحثہ کرنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اس گفتگو کا جو محور ہے وہ منطق دو ہوگا. منطق ایک جو مرحلہ آشنائی ہے وہ ہمارا اس وقت محور گفتگو نہیں ہے. اس کتاب کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو बाज अरबी किताबों के अंदर नहीं पाई जाती। एक ये है कि जिस तरह के अभी आपके खिदमत में अर्ज किया कि इसको तालीमी रविश के मुताबिक लिखा गया है, और दूसरी खसूसियत इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ज्यादा ऐसी अभास नहीं है कि जिनका ज्यादा इस्तेमाल ना होता हो। कोशिश ये की गई है कि उन अभास को जिक्र किया जाए कि जो इल्म मंतिक में जब इंसान फिक्र करता है, इस्तेदलाल करता है, वो कवायद इस्तेमाल होते हैं, उनको यहाँ पर बयान किया जाए। लिहाजा बहुत सारी ऐसी बहसें जो आप पुरानी मंतिक की किताबों में देखेंगे, लेकिन इस किताब में वो अभास मौजूद नहीं होंगी। उसकी वजह यह कि वो कम इस्तेमाल होने वाली हैं, तो लिहाजा ज्यादा तवज्जो जो है वो नहीं दी इन्होंने। एक और जो इसके अंदर खसूसियत मौजूद है वो है कि इसके अंदर जो है वो तमरीन मौजूद है, यानी जिसको आप क्या कहते हैं उर्दू में, मशक कहते हैं ना, आखिर में जो क्या होता है तालीमी किताब में आखिर मशक कहते हैं उसको,
मशक, एक्सरसाइज मशक,
सवाल आखिर में आ जाते हैं उसकी तरह,
मशकी
लेकिन
सवालात,
हाँ मशकी
मशकी सवालात।
सवालात, हाँ उसमें एक, लेकिन एक वो नुस्खा जो मैंने आपको दिखाया था कि चूंकि इसके दो नुस्खे हैं, एक नुस्खा इसका जो है वो तकरीबन आज से मतलब 6-7 साल पहले जो है, यानी 2000 तकरीबन जो है वो 10-9-10 में जो है वो छपा था, उसके अंदर एक खसूसियत मौजूद है कि जो अब बाद वाली में ये खसूसियत नहीं है, यानी जो अभी हमारा किताब हमारे सामने जो है मौजूद है, उसमें तमरीने ज्यादा हैं मल्टीपल सूरत में। मल्टीपल ही कहते हैं ना उसको, जो आप टिक लगाकर मसाइल को हल करते हैं, चॉइस वाले जो सवालात होते हैं उसमें
एमसीक्यूज
आकर,
कहते हैं।
एमसीक्यूज जो है, मतलब एक बात कर दी गई है, नीचे तीन खाने बना दिए गए हैं, चार खाने बना दिए गए हैं, तो वो इस तरीके से इन्होंने फिर उसमें काफी हद तक वो तमरीनें लिखी हैं। उसमें क्या होता है फिर जब तालिबे इल्म दरगीर होता है उसमें, तो खुद हल करने की कोशिश करता है, तो जो बहसें पहले पड़ी हैं वो उस इंसान जो है उसको हल कर लेता है। अच्छा, फिर उस किताब में एक जो खसूसियत है वो ये है कि एक ही दर्स में दो तमरीनें हैं, मसलन आधा दर्स पढ़ने के बाद तमरीन, फिर पूरा दर्स करने के बाद तमरीन, तो इससे तालिब इल्म हमेशा जो है वो दरगीर रहता है। तो लिहाजा ख्वाहिश ये होगी आपसे कि उन तमरीनों को आप हल करते रहें। अगरचे ये किताब जो इस वक्त हमारे पास है वो कि कौन सी चाप है, इसकी नौबत चाप जो है, छपने की जो तारीख है, और नौबत चहारुम है, और ईरानियों की 97 है, और अंग्रेजी जो है वो क्या बनती है 2018। तो ये हमारे मद्देनजर है, इसमें इस किस्म की तमरीनें जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो किताब है मंतिक के दो के नाम से है, उसके यानी इस किताब के ऊपर दानिश मंतिक लिखा हुआ है, उसके ऊपर मंतिक दो लिखा हुआ है, और वो पुरानी है, यानी ईरानी तकरीबन 1391 की छपी हुई है वो, यानी अब 1397 चल रहा है, यानी 6 साल पहले ही है, यानी तकरीबन 2011-12 में वो छपी थी। तो लिहाजा इस किताब को मद्देनजर रखते, उसको भी हतमन मद्देनजर रखें, उसकी तमरीने हदअकल जो है वो आप उसकी तस्वीरें बना के अपने पास रखें और उसको हल करने की कोशिश करें, ताकि जितना ज्यादा इंसान अपने फिक्री एतबार से मशगूल होगा मसाइल को हल करने में, मंतिक उतनी जल्दी हजम होगी और इंसान जो है उसके अंदर तसल्लुत हासिल कर लेगा। ये था इस किताब के बारे में। और एक और नुक्ता आपको अर्ज कर देता हूं, वो ये कि ये मंतिक दो जो है ये मंतिक मुजफ्फर की मुकाबले में लिखी गई है, और इसकी तरतीब और अक्सर अभास जो है वही मंतिक मुजफ्फर वाली है। लिहाजा अगर कोई तालिबे इल्म इस किताब को अच्छे तरीके से हल कर लेगा, तो अगर वो मंतिक मुजफ्फर की तरफ रुजू करेगा, तो बहुत ही कोई कम मवारिद ऐसे होंगे कि जो उसको समझ में नहीं आ रहे होंगे, वायला वो खुद मंत्री मुजफ्फर को समझ सकता है, उसको तदरीसन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मुताला करे उसका, उसको मजीद बहसें जो रह गई है उसको हल करे और अगली किताब में चला जाए। लिहाजा एक इस किताब की जो है ये भी खसूसियत मौजूद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी है कि वो मंत्री मुजफ्फर पढ़े। हाँ, जिसने अरबी इबारत हल करनी है तो वो चला जाए और अरबी इबारत हल कर ले। वाइला मुहतवा के एतबार से कोई खास है फर्क, लेकिन इतना फर्क नहीं है। उसमें कुछ बहसें ज्यादा होंगी, उसमें कुछ कम होंगी, लेकिन असल मंतिक की अबहास में कोई फर्क नहीं है। तमाम अबहास मंतिक जो मुजफ्फर में है वो यहाँ पर भी मौजूद है। हाँ, कुछ तफासील जो हैं वो मुमकिन है आगे पीछे मौजूद हों। बहरहाल, इंशाल्लाह खुदा ने अगर तौफीक दी तो इसको आगे लेकर चलेंगे। मंतिक के हवाले से कुछ मुकदमाती बहसें आपने फिर मुतहरी की मंतिक में भी देखी होंगी कि मैंने वहां पर इशारा किया हुआ है, शहीद ने इशारा किया है। और मैं आपसे एक और तकाजा यही करूंगा कि आप मंतिक मुजफ्फर में जो मेरे इब्तदाई दुरूस हैं तीन चार, उनको भी थोड़ा सा सुनते रहें, क्योंकि उसमें मैंने पहले दो दरसों में जो है वो इल्म मंतिक की किताबों का तारुफ करवाया है। इल्म मंतिक की कौन कौन सी किताबें अहम हैं और उनको किस तरीके से पढ़ना है उनकी तरफ इशारा किया है। वो एक अच्छा है आशनाई के लिए कि किताबों का कम से कम पता हो कि मंतिक की कौन कौन सी अहम तरीन किताबें हैं। उसके बाद फिर मंतिक की अहमियत के ऊपर बहस की है कि इल्म मंतिक की क्या अहमियत है। हम आज खुलासा उन आभास का यहाँ पर जो है वो बयान करते हैं। दोबारा फिर इंशाल्लाह असले किताब में वारिद हो जाएंगे। मुकदमा पहला ये बनता है कि इंसान को अगर तहलील किया जाए, यानी इसके बारे में जो है वो तहकीक की जाए और की भी गई है, तो नतीजा ये निकला है कि इंसान तमाम कायनात के जो हकायक हैं, जो मौजूदात हैं, उनसे जुदा होता है फकत एक चीज की वजह से, और वो है कि इंसान फिक्र करने वाला है। तफक्कुर की खसूसियत इंसान के अलावा किसी और मौजूदात में मौजूद नहीं है। ना हैवान तफक्कुर करता है, ना जमादात तफक्कुर करते हैं, ना नबातात तफक्कुर करते हैं। यानी तफक्कुर की जो खसूसियत है इस कायनात के अंदर, वो फकत और फकत इंसान के पास है। पर जब इंसान ने फिक्र करनी है तो ये भी बात मुसल्लम है और तमाम इंसान इसको दर करते हैं और मानते हैं कि इंसान अपनी फिक्र में खता भी कर जाता है, गलतियां भी हो जाती हैं उससे। फिक्र करके एक नतीजे तक पहुंचना चाहता था लेकिन फिक्र की सही नतीजा ना निकल सका, तो ये चीज भी इंसान को पता है। तो अब इस फिक्र के क्या उसूल व कवायद व जवाबित होने चाहिए कि जिनको मद्देनजर रख कर इंसान सही फिक्र और बातिल फिक्र के दरमियान तफकीक व जुदाई कर सके, यानी वो ये कह सके कि ये फिक्र गलत है। क्यों? क्योंकि फलाने कवायद को यहां पर जो है वो मद्देनजर नहीं रखा गया। बस इल्म मंतिक जरूरी है हर बशर के लिए। क्यों? इस वजह से कि मंतिक फिक्र सही फिक्र करने की कवायद बयान करती है, और फिक्र चूंकि तमाम बशरियत करती है, जो भी इंसान है वो फिक्र करता है, बस हर इंसान इल्म मंतिक का मोहताज है। दुरुस्त है। मतलब मैं अपनी इस बात को अल्लामा तबातबाई की इबारत के जरिए तस्दीक करता करता हूं المیزان تفسیر میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 255 پر جو عربی کا نسخہ ہے ان کا، اس میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، عبارت بھی ممکن ہے انہی کے ساتھ ملتی جلتی ہو. فرماتے ہیں کہ ان الحیات الانسانیہ حیات فکریہ، انسانی زندگی فکری زندگی ہے، فکر ہے انسان کی زندگی میں. اور لا تتم له الا بالادراک الذي نسميه فکرا، اور یہ فکری زندگی یہ کامل یا یہ فکری زندگی کے اندر مہم ترین عنصر جو ہے وہ ادراک کا ہے، جس کو ہم فکر کہتے ہیں. یعنی فکری زندگی کب فکری زندگی کہلائے گی؟ کہ جب اس کے اندر ادراک اور تفکر ہوگا. وَكُلَّمَا كَانَ الْفِكْرُ أَصَحْ وَأَتَمْ كَانَ الْحَيَاةُ أَقْوَمْ، جتنا جتنا یا جتنی جتنی فکر صحیح اور تام ہوگی، درست ہوگی جتنی جتنی، اتنی اتنی انسان کی زندگی بھی بہتر ہوگی. یعنی جو انسان صحیح فکر کرے گا نتیجہ بھی صحیح لے گا، جو انسان غلط فکر کر پایا تو اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ غلط نکلے گا. آج جتنی بھی ترقی اس دنیا میں نظر آتی ہے تمام علوم کے اندر، چاہے وہ سائنسی علوم ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز کے علوم ہوں، چاہے وہ علوم عقلی والے علوم ہوں، جتنی بھی ترقی نظر آ رہی ہے وہ اسی فکر کا نتیجہ ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انہی علوم کے اندر بعض علمی قوانین غلط ثابت ہو جاتے ہیں. جب ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علمی قوانین جو غلط ثابت ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے تفکر صحیح نہیں کیا گیا تھا. ایک قاعدہ بنا دیا گیا، سمجھا کہ اس کی علت چونکہ فلانی چیز ہے لہذا قانون یہ بننا چاہیے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، اصلا یہ ایسا نہیں تھا. بہرحال تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر کی، یعنی آپ یہاں سے یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ فکر انسان کی ذاتیات میں شامل ہے. ہو نہیں سکتا ایسا کہ انسان تو ہو لیکن فکر نہ کرتا ہو. درست ہے؟ اور اس میں منطق چونکہ قواعد بیان کرتی ہے صحیح فکر کے بارے میں، لہذا علم منطق اس اعتبار سے اہمیت اختیار کر جاتی ہے. اور انسان کے اندر جو ہے منطق سے مراد، یعنی آپ یوں کہہ لیں منطق یعنی قواعد تصحیح فکر، منطق یعنی فکر کو صحیح کرنے والے قواعد، صحیح فکر کرنے کے قواعد، صحیح فکر کرنے والے قوانین، اس کو منطق کہتے ہیں. انسان کے اندر اگر تھوڑی سی مزید ہم اگر توجہ کریں، جا کر اپنی زندگی میں تھوڑا سا کیا کہہ لیں، ڈیپلی نگاہ کریں اس کے اندر جا کے، تو ایک اور چیز ہمارے سامنے کشف ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں لمحہ بلمحہ منطق سے استفادہ کرتا ہے. مثلا منطق آپ کو یہ سکھائے گی کہ استدلال کیسے کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں معمولاً اگر کوئی انسان ان پڑھ بھی ہو اور جب وہ اپنی بات किसी को समझा रहा होता है तो उसकी बात में इस्तेदलाल मौजूद होता है, और वही इस्तेदलाल होता है कि जिस इस्तेदलाल को मंतिक सिखाती है। मसलन मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं, आपको भूख, आपको प्यास का एहसास हुआ, प्यास का एहसास होते ही आप पानी की तरफ चल पड़े और पानी पिया उससे। आपका जो ये सादा सा अमल है ये भी क्या है, एक मंतिक है, मंतिक के कायदे से आपने इस्तेफादा किया है, यानी आपने इस सादे से अमल में भी इस्तेदलाल से काम लिया है। कैसे? जब आपके अंदर एहसास पैदा हुआ प्यास का, तो आपका एक कजिया यह बन जाता है कि मुझे पानी की जरूरत है। यही बनता है ना पहला कजिया। जब एहसास होता है पानी का, तो आप पहला कजिया ये बनाते हैं, चाहे वो आप जहन में बनाएं, चाहे वो आप अल्फाज में बनाएं, यहीं भी वो बन जाता है कि मुझे पानी की जरूरत है। ये पहला मुकदमा है। दूसरा मुकदमा क्या बनता है उसके जहन के अंदर, कि जिसको भी पानी की जरूरत है वो उसके वसाइल फराहम करे। बस वो उठता है, जाकर जग गिलास उठाता है और पानी पी लेता है। अब आप देखें, चूंकि आपने मंतिक अव्वल में ये मंशिन तहरी में आपने देखा है, सुगरा व कुबरा व नतीजा, सुगरा बना है कि पानी की एहतियाज है हमें क्योंकि प्यास लगी हुई है, कुबरा क्या बन गया, दूसरा मुकदमा क्या बन गया, कि जो भी पानी का मोहताज है वो जाकर वसाइल फराहम करे, यानी पानी को फराहम करे। समझिए, फिर आप हरकत करते हैं कि चलो उठो, पानी के बारे में हरकत करते हैं, फ्रिज की तरफ जाते हैं, नलके की तरफ जाते हैं, गिलास उठाते हैं। ये जो आप जा रहे हैं, आप आपका अमल सेकेंडों से भी कम जमाने के अंदर अंजाम पाया है। जैसे ही एहसास हुआ फौरन उठ के चले गए, लेकिन ये इस्तेदलाली अमल इतना तेजी से अंजाम पाता है कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि मैं इस्तेदलाल कर रहा हूं अपने सादे से अमल में भी। इसी तरीके से आप अपने अमाल को सर्च करने लग जाएं, दिक्कत करने लग जाएं, तो आप महसूस ये करेंगे कि इंसान सरापा ये क्या करता है, मंतिक है। यानी मंतिक इंसान की सरिश्त में रखी गई हुई है। हर इंसान मंतकी है, बगैर मंतिक के असलन इंसान जो है वो किसी फेल को अंजाम नहीं देता। मसल इसमें मैं चंद बुजुर्गान की आपको जो है वो जिक्र करता हूं इबारात के, जो इस मतलब की तरफ जो है वो इशारा करती हैं। मसलन आयतुल्ला हसन ज़ादा आमुली, इनके किताब है दुरूस मारफत नफ्स, उसके सफा नंबर 194 में यूं फरमाते हैं, फरमाते हैं कि न गुफ्ते न मानद कि इल्म मंतिक इख्तिसास बे दोरई व खुरई न दारत, कि ये चीज मख्फी ना रहे आप पर कि इल्म मंतिक किसी जमाने के साथ खास नहीं है, किसी तबके के साथ खास नहीं है, किसी दौरे के साथ खास नहीं है, बल्कि बा तबीअत बशर अजीनस, बल्कि बशर की तबीयत में ये शामिल की गई है। अजीन होना यानी मिली हुई होना, तबीयत बशर के अंदर मंतिक है। वहीच गा फितरत बशर अजान खाली न बुदे अस्त, फितरत बशर इससे खाली नहीं। इसी तरीके से एक और शख्सियत है कि जो मारूफ हैं हौजा इल्मिया कुम के अंदर, वो यूं फरमाते हैं, मोहम्मद अली गरामी नाम है इनका, इन्होंने हाशिए की शर्ह लिखी है मकसूदुत तालिब के नाम से, उसमें यूं फरमाते हैं, बिल जुमला असलुल मंतिक फी फितरतिल बशर, कि मंतिक बशर की जो है वो फितरत में शामिल है। व यक मोलो बे मुजावलतिल मबाहिसिल इल्मिया, और ये मंतिक तकामुल पैदा करती है इल्मी अबहास के जरिए, कि इसके ऊपर हम बाद में बहस करेंगे। बस खुलासा ये कि इल्म मंतिक तकवीनी तौर पर बशर में मौजूद है और अपने हर अमल में वो बशर उस मंतिक से इस्तेफादा कर रहा होता है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि जब मंतिक इंसान की फितरत में शामिल है और हर इंसान मंतिक से इस्तेफादा करता है, तो फिर मंतिक को पढ़ने में टाइम क्यों जाया करें? फिर हमने ये किताब क्यों शुरू की है? फिर हम जो है वो मंतिक मुजफ्फर क्यों पढ़े और इतने साल जो है मंतिक को क्यों पढ़े? ये एक सवाल जो है वो जहन में उठता है। जवाब उसका ये है कि दुरुस्त है कि मंतिक तकवीनन इंसान में मौजूद है, फितरत इंसान में मंतिक मौजूद है, लेकिन ये काफी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज फितरत में मौजूद हो तो वो काफी हो हमेशा इंसान के लिए। मिसाल देते हैं उसकी, मिसाल क्या है उसकी, हम कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान में तदब्बुर करते हैं, तो ये नतीजा हमें मिलता है उसमें कि खुदा की मारिफत फितरी है। अफिल्लाह शक्कुन फातिर समावात वल अर्ज, यानी खुदा इस तरीके से खिताब करता है, क्या खुदा में शक है कि जिसने जमीन और आसमान को खल्क किया है? यानी सवाल करने का अंदाज बता रहा है कि खुदा एक ऐसी हस्ती है कि जिसमें हम शक नहीं कर सकते। एक और आयत में जो है वो इरशाद हो रहा है, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, कि फितरतुल्लाह पर तमाम इंसानों को खल किया गया है। इन फितरतुल्लाह से क्या मुराद, आइमा से पूछा गया तो उससे मुराद ये खुदा शनासी व मारफत खुदाबंदी ली गई है। यानी नतीजा ये निकलता है कि मारफत परवरदिगार फितरी है। यानी क्या मुराद फितरी है, यानी अगर बशर हो और उसकी फितरत, ये कभी भी खुदा से गाफिल नहीं हो सकते, इंसान कभी खुदा से गाफिल नहीं हो सकता। खुब अब आप हम सवाल करते हैं कि जब खुदा की मारिफत फितरी है तो फिर हम अकायद के दर्स क्यों पढ़ते हैं? जवाब उसका ये देते हैं कि फितरत कभी कभी आलूदा हो जाती है, मादियात के नजर हो जाती है, मादियात की तरफ ज्यादा तवज्जो करने की वजह से वो फितरत आलूदा हो जाती है, और वो फितरत जो है उसकी तरफ से तवज्जो इंसान की हट जाती है, लिहाजा खुदा की मारिफत को खो बैठता है इंसान, भुला देता है। लिहाजा वो मुमकिन है इस आलूदा फितरत की वजह से खुदा का इनकार कर दे। लेकिन अगर इसी इंसान की कि जिसने खुदा का इनकार किया है, अगर इसकी फितरत को पाक कर दिया जाए, तो यही इंसान जो है वो खुदा का इकरार भी करेगा। پس جب کتابیں انسان پڑھتا ہے اگرچہ وہ مباحث فطری ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ کتابوں میں پڑھنے والی بحثیں انسان کی فطرت کو پاک کرنے کا فائدہ دیتی ہیں۔ پس ہم علم کلام میں توحید کی بحث کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اگر ہماری فطرت آلودہ ہو کر خدا سے غافل ہو چکی ہے تو ہم علم کلام میں توحید کی بحث پڑھ کے اپنے آپ کو متوجہ کر سکیں اپنے اس فطرتی عقیدے کی طرف۔ علم منطق بھی ایسا ہی ہے، علم منطق اگرچہ فطری ہے لیکن انسان اگر فقط اکتفا کرے اپنی اس فطرتی جو ہے اپنی خصوصیت پر تو انسان کبھی خطا سے بچ نہیں سکتا۔ تو لہذا علماء نے قواعد علم منطق کو تدوین کیا تاکہ ان قواعد کو پڑھ کے انسان جو ہے وہ اپنی اس تخمینی منطق کو مزید بہتر بنا سکے اور اس سے استفادہ انتہائی صحیح درجے سے کر سکے اور کبھی اس میں خطا نہ کر سکے، اور خطا کا جو ہے غلطی کا امکان کم سے کم سے کم کر سکے ان قواعد علم منطق کو پڑھ کے۔ مثلا ابھی آپ ایک سادہ، جیسے میں نے مثال دی، اگر آپ کو سادہ سا ایک دکاندار اگر کسی اپنے گاہک کو کانے کرنا چاہتا ہے کہ میری چیز اچھی ہے تو وہ استدلال کر رہا ہوتا ہے، درست ہے؟ لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنے استدلال میں غلطی کر لے اور نتیجہ غلط نکل آئے، اس کو وہ تصحیح نہیں کر سکے گا، صحیح نہیں کر سکے گا کہ اس غلط فکر کو میں کیسے صحیح کر سکوں کیونکہ اس نے وہ قواعد نہیں دیکھے۔ اس نے وہ قواعد جو ہیں وہ چونکہ تفصیلی طور پر نہیں پڑھے ہیں، اور فطرت میں بھی وہ منطق جو ہے اس کے اندر کیا ہے اجمالی طور پر موجود ہے، بسیط حالت میں موجود ہے، تو اس کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ منطق کو پڑھا ہوا انسان جلدی متوجہ ہو جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہے، لیکن جس نے منطق کو نہ پڑھا ہو وہ اتنی جلدی متوجہ نہیں ہوتا۔ بس علم منطق کی کتابوں کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنی اس فطرتی منطق سے بہترین طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غلطی کے امکان کو کم کر سکتا ہے۔ یہ ایک مقدمہ تھا، کچھ اور بحثیں مقدماتی رہتی ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں عرض کر کے متن میں جو ہے وہ وارد ہو جائیں گے۔